मैं एक बात कहना चाहता हूं और ये औपचारिक नहीं है। ऐसी मंडलियों में जब मैं जाता हूं तो कुछ इस गर्ज से भी जाता हूं कि कुछ नई बात जानूं या पुरानी बात जो जानता हूं उसे पक्का करूं। तो कल जो चर्चा यहां मैंने सुनी उससे बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। मेरा जो बात मैं कहता हूँ उसके विषय में कोई आग्रह नहीं होता। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि विचार का आग्रह जितना बढ़ता है सत्य का आग्रह उतना क्षीण होता है, क्योंकि विचार अपना होता है, सत्य सबका होता है। विचार के आग्रह का मतलब है अपना विचार। शुद्ध विचार का कोई आग्रह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आग्रह के लिए गुंजाइश नहीं। शुद्ध विचार धीरे धीरे सत्य की तरफ ले जाता है। तो कल जो चर्चा हुई उसमें से जितना कुछ मुझे याद है उसके बारे में पहले कहूँगा। तो पहले तो सवाल मैं लेता हूँ परिवार नियोजन का, कुटुंब नियोजन का। उसके बारे में मैंने ये कहा था, कंपल्शन चाहिए, फोर्स नहीं। तो कंपल्शन से मेरा मतलब है दो तरह का कंपल्शन। एक सामाजिक परिस्थिति का, जिसे हम मॉरल कोअर्शन कहते हैं। कोअर्शन आवश्यक है, एक दूसरा नतीजा है जिस पर मैं पहुंचा हूं। परसुएशन, समझाने की शक्ति, जहां हमारी कुंठित हो जाती है, कम पड़ती है। और अनुनय की, समझाने की और मनाने की। मनाने का यानी हृदय, उसके हृदय का आवाहन करें, उसकी सद्भावना का, या फिर उसकी बुद्धि, उसके विचार का हम को विचार जागृत करें। तो एक ये दोनों मिलकर परसुएशन होता है, कन्विक्शन, और उसको मनाते हैं, उसके हृदय को जागृत करते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फ्रेंडली परसुएशन जहां कुंठित हो जाता है, दुनिया के पैसिफिस्ट में से ये फ्रेंड्स की एक जमात है, जो जमात सिर्फ परसुएशन पर ही विश्वास करती है। दुनिया में ऐसे लोग हैं, इनमें से विनोबा भी हैं, और ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत उदात्त और उच्च भूमिका है कि दूसरे की बुद्धि का इतना आदर करेंगे कि समझाएंगे। तो समझाओ 7 दफ़ा नहीं, 70 दफ़ा 7 times 7 समझाते ही चले जाओ। जब तक न समझे तब तक समझाते चले जाओ। लेकिन समझाने की हमारी शक्ति कहीं कहीं कुंठित हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, कोअर्शन, दबाव डालते हैं। दबाव सद्भावना जागृत करने के लिए, उसके हृदय में छिपी हुई मानवता को प्रकट करने के लिए दबाव, उसको दबाने के लिए नहीं। इसे बहुत पहले 1921 में, अब उसका नाम मैं भूल गया हूँ, नॉन वायलेंट कोअर्शन नाम की एक किताब गांधी पर किसी अमेरिकन ने लिखी थी शायद, अहिंसक दबाव। अहिंसक तो है लेकिन दबाव है, ऑक्सीमोरन है, यानी एक उदाहरण विरोधाभास का है। हमारे यहाँ नागपुर में एक गवर्नर था, वो एक दफ़ा हमारे सोशल गैदरिंग में आया कॉलेज के, तो मुझसे कहा गया कि इसका कुछ इंट्रोडक्शन करो। तो मैंने कहा इसका नाम ऑक्सीमोरन का उदाहरण है, क्योंकि वो उसका नाम था फ्रैंक स्लाई। अब फ्रैंक भी आदमी हो और स्लाई भी हो, तो नॉन वायलेंस भी हो और कोअर्शन भी हो, अपने में कॉन्ट्रेडिक्शन इन टर्म्स हैं, परस्पर विरोधी चीज़ें हैं, लेकिन कोअर्शन की आवश्यकता है। उसे मॉरल कहिए, अहिंसक कहिए, कोअर्शन से मतलब यह है कि बुद्धि और हृदय की शक्ति जहाँ कुंठित होती है, वहाँ अवांतर शक्ति का प्रयोग, चाहे वो मानसिक हो, आत्मिक शक्ति हो, नाम कुछ भी दीजिए, अवांतर शक्ति है। और वो शक्ति ऐसी हुए है जो प्रतिपक्षी के व्यक्तित्व का विकास करे, उसके व्यक्तित्व को दबाए नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास करे। तो एक कोर्शन तो है पब्लिक ओपिनियन का, जिसको मैं मुख्य मानता हूँ। पब्लिक ओपिनियन मुख्य सैंक्शन है, ये मुख्य हमारा आधार होना चाहिए। हमेशा प्रकट नहीं होता है वो, हर आदमी समाज की बात कहता है, क्या करें मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन समाज, असल में जब 100 आदमी ये कहते हैं और 100 ही आदमियों का गांव है, तो समाज कोई दूसरा नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन समाज की बात कहेगा। तो एक समाज शास्त्री ने उसकी व्याख्या की है, द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज लाइक द प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर, 16 pounds टू द स्क्वायर इंच। अब हम जीते हैं तो एटमोसफियर का, वातावरण का जो प्रेशर है, दबाव है, वो हम जानते नहीं हैं, लेकिन इट इज देयर, 16 pounds टू द स्क्वायर इंच। ऐसा एक पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर चाहिए, जो हमारे देश में अभी तक परिवार नियोजन के प्रतिकूल है। धन धान्य समृद्ध हो और अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद अष्टपुत्रा सौभाग्यवती का दिया जाता है। और पुष्ट का पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं, हर जितनी विधियां हैं धार्मिक, उसमें संकल्प यही होता है कि संपत्ति बढ़े और संतति भी बढ़े। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, और परिवार नियोजन इस परंपरा के विरोध में है। तो कंपल्शन में पहला कंपल्शन तो पब्लिक ओपिनियन का चाहिए, लेकिन इसमें देर लगेगी, इसलिए दूसरा कंपल्शन कानून का। कानून सैंक्शन के बिना कानून रह नहीं सकता है। बहुत पहले जब मैं यहाँ गुजरात में मैं आया था, तो एक भाषण में मुझे एक उपमा सूझ पड़ी कि कानून हमारे देश के वो दोने जैसा होता है, क्या पड़िया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पड़िया के तरह होता है, अपने आधार से खड़ा नहीं हो सकता, फिर आप कहीं उसको भात या कुछ चीज़ का लगाते हैं, आधार देते हैं, तब वो खड़ा होता है। तो कानून अपने आधार से नहीं खड़ा हो सकता, इसे कोई आधार चाहिए। तो इसके आधार दो हैं, एक तो दंड है, या फिर दूसरा आधार है प्रत्यक्ष बलात्कार, बल प्रयोग जैसे ज़बरदस्ती कहते हैं। तो मेरा मतलब यह था कि दंड और बल प्रयोग दोनों के मात्रा कम होनी चाहिए। वातावरण ऐसा बनना चाहिए जिस वातावरण में यह न करना पड़े। अब कल कुछ तरुण मित्रों ने कहा कि ये सवाल है ही नहीं ओवर पॉपुलेशन का, या एक पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन का, तो अगर ये सही साबित हो उनका कहना, तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, क्योंकि इससे आनंद की क्या चीज हो सकती है। ये तो मनुष्य को स्वागतार्ह बना देता है, स्वागत योग्य बना देगा। तो मनुष्य मनुष्य के लिए स्वागत आतिथ्य दुनिया में से कम न हो नए मनुष्यों के लिए। राजा जी ने इसे भ्रूण हत्या कहा था, और मैंने अपने जीवन में गांधी के बराबरी का अपना नेता राजा जी को माना था, तो मुझे उनकी बातें बहुत पते की लगती थी। उन्होंने कहा था ये भ्रूण हत्या है, इससे से तुम बूढ़ों को मारो और उनको आने दो। लेकिन बूढ़े मरने को तैयार होंगे कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मौत जितनी नज़दीक आती है उतनी जीवन की लालसा बढ़ती चली जाती है, जीवन का मोह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो जब तक सामने नहीं आती। एक अवांतर विषय है, थोड़ा आपसे कहूँ। शंकर राव देव हमारे नेता थे, बहुत निर्भय आदमी। येरवडा के जेल में 20 कोड़े पड़े, बगैर आह किए अपने कमरे में चलते हुए निकल गए। इतने बहादुर आदमी, लेकिन जब बूढ़े हुए और मौत सामने आई तो मुझसे कहने लगे कि मैं मृत्यु से डरता हूँ। सबको आश्चर्य हुआ कि इतना बहादुर आदमी मृत्यु से डरता है, तो मुझसे पूछने लगे कि तुम इसका क्या, तुम्हारा विश्लेषण क्या है। मैंने कहा कि मैं भी डरूंगा इस तरह से, क्यों कि मैं किसी चीज़ के लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मरने के लिए कैसे तैयार हूँ। मैं अंग्रेज़ों के राज में गोली खाकर मरने को तैयार था, लेकिन वहाँ मौत सामने नहीं थी, अंग्रेज सामने था, गुलामी सामने थी। मैं किसी को बचाने के लिए मरने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मृत्यु सामने नहीं होती है, कोई दूसरा प्रयोजन सामने होता है। जहाँ कोई प्रयोजन ही सामने न हो और केवल मृत्यु सामने हो, तो आदमी क्यों मरे? सिर्फ इसलिए कि ईश्वर ने की नियति है? तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने कहा, शंकर राव जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, अब आपके आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होगा यहाँ से, क्योंकि मृत्यु अब सामने है, इससे पहले कभी सामने थी ही नहीं। ये आप देखिए ना कि मैं यहाँ 3 दिन आया, आप सबके साथ रहने में अगर इतना आनंद है, तो आपको छोड़कर जाने में अगर मुझे दुख न हो तो मैं मनुष्य हूँ। अब जिस संसार में आदमी 70-80 साल तक जिया हो, उसको संसार को छोड़कर जाता है कि ये मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं तो उसको बहुत निष्ठुर ही नहीं, संवेदनाहीन मानता। उसको तो इस दुनिया से प्रेम होना चाहिए, इन मनुष्यों से प्रेम होना चाहिए। अब इनको छोड़कर जा रहा है, और केवल इसलिए जा रहा है कि नियति है। तो इसलिए बुढ़ापे में मृत्यु का से प्रेम नहीं होता है बहुत। वो जो काका साहब अगर कहते हैं मृत्यु सुखा है, वो तो उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जीवन सखा है। दूसरा मरता है तो भी दुख होता है, और स्वयं नाहक मरना पड़े तो भी दुख होता है। तो ये जो स्वागत होगा मनुष्य का, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन फॉल्स है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। इसको एक्सप्लोर कीजिए, आप लोगों का काम है, क्योंकि आप तरुणों को ही आगे जीना है। आपको भीड़ में जीना न पड़े तो आप फिक्र कीजिए, मैं इसकी बहुत चिंता नहीं करूंगा। डेमोग्राफी का बहुत अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन जितना किया है उतने से मैं, और ये गांधी विनोबा से लेकर सब ने माना है कि मनुष्यों की भीड़ होगी तो मानवता कम होगी। और मेरी चिंता इतनी है कि मनुष्य मनुष्य का संबंध निरुपाधिक प्रेम का हो। एक मित्र ने यह भी कहा था कि देहातों में तो हर बच्चे का स्वागत होता है, किस लिए होता है? वो काम का है। ये स्वागत मानवीय स्वागत नहीं है मित्रों, इसमें प्रेम मुख्य नहीं है, आवश्यकता मुख्य है। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य मनुष्य के साथ बिना आवश्यकता के जिए, यह अध्यात्म है। मनुष्य को मनुष्य की संगति बिना आवश्यकता के प्रिय हो, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। आपको मालूम है ना, पहाड़ों में 10-10 स्त्रियां कर लेते हैं, 10-10 शादियां करते हैं, क्योंकि हर स्त्री एक बिना तनख्वाह की मजदूर नहीं हो जाती है। और उन्होंने मुझे बताया कि यही कारण है हमारा। तो उस लड़के का विकास नहीं होने देगा वो, उसको गाय चराने भेजेगा, उसको खेत में भेजेगा। ये श्रम नहीं है, ये बेगार है। इस बात को भी समझ लीजिए आप, श्रम निष्ठा और बेगार में बहुत फर्क है। मजदूर और किसान श्रम निष्ठ नहीं है। कल भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो पहला वरदान ये मांगेगा कि इस मशक्कत से, इस बेगार से हमको बचाओ। कोई मजदूर और कोई किसान श्रम निष्ठ नहीं है। हम उसको आइडियलाइज करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, उदात्तीकरण करते हैं। वो दरिद्र नारायण देवता है, लेकिन वो अपने को देवता कभी मानता नहीं है। दुखी देवता है, मजबूर देवता है। उसके लिए मजदूर फोर्स लेबर है। जितने लेबर वो करता है, फोर्स लेबर है। और संस्कृति के विकास के लिए लेजर चाहिए। लेजर इज लिबर्टी। ये समाजवाद का सूत्र है। फुर्सत के बिना सांस्कृतिक विकास नहीं होता। इसलिए संस्कृति हमेशा विकसित हुई लेजर क्लास में। विकृति भी वही हुई, लेकिन जितनी संस्कृति है लेजर क्लास में है, और लेजर क्लास का अनुकरण ही प्रगति मानी जाती है। ये इसलिए बतला रहा हूं कि सारी क्रांतियों में एक दोष रहा है जिसे एलिटिज्म कहते हैं। विशिष्ट लोगों का ही उसमें प्रभुत्व रहा है, प्रभाव विशिष्ट लोगों का रहा है संस्कृति में, लेकिन वो एलिटिज्म कलुषित था। विनोबा ने लिखा है, मराठी शब्द लिखा है कि ते नासले नासले यानी दूध जैसे फट जाता है, खट्टा हो जाता है, उस तरह से उसमें खटाई पड़ गई। क्यों पड़ गई? ये एलिटिज्म जो था वो पावर का बना, पावर एलिट बने। ये कल्चरल एलिट्स नहीं थे। वर्ग का डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट होगी। प्रति संकल्प क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट। प्रोलेटेरियट की तो हुई नहीं डिक्टेटरशिप, पार्टी की हुई, और पार्टी में भी कॉकस की हुई। ये एलिटिज्म जो क्रांति को कलुषित कर देता है, ये अलग तरह का एलिटिज्म है। कल मैंने आपसे आदिवासियों के से और हरिजनों के सिलसिले में कहा था कि हरिजन ब्राह्मण की तरह रहने लगे, ये हम चाहेंगे कि ब्राह्मण हरिजन की तरह रहने लगे। आरोहण होगा कि अवरोहण होगा? ये दुर्भाग्य है दुनिया का कि संस्कृति मुट्ठी भर लोगों में रही है। क्योंकि जहां, और लेजर का मतलब आप आलस नहीं है, आलस को अलग रखिए, इंडोलेंस नहीं है, लेजर का मतलब है वो समय जो हम अपनी मर्जी का काम करने में बिताते हैं। शौक का काम करने में जो समय बिताते हैं उसका नाम लेजर है। बैठे रहने का मतलब लेजर नहीं है, उसमें अपनी मर्जी का काम हम करेंगे। इसलिए संस्कृति में सबसे बहुत बड़ा मूल्य खेल का है। खेल न हो तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ये खेल नहीं जो आप ये कौन ये गावस्कर और इनका जो हो रहा है, ये नहीं, ये तो प्रोफेशन है, कमर्शियलाइज्ड। कमर्शियलाइज रिक्रिएशन इज नॉट रिक्रिएशन, वो तो बिजनेस है। खेल यहाँ है, खेल से सांस्कृतिक विकास होता है। इसीलिए कहा ना कि ये भगवान की क्रीड़ा है, ये सारा संसार उसकी लीला है। खेल में से, अब भगवान की अगर लीला होगी तो उसका भी सांस्कृतिक विकास हुआ होगा, उसमें से विकास होता है, सांस्कृतिक विकास। तो लेजर जहाँ नहीं है वहाँ अगर मनुष्य की चाह है तो आवश्यकता के लिए है। इसलिए वहाँ जो आप समझते हैं कि वो हर बच्चा, तो हर बच्चा क्या, हर गाय, हर भैंस, हर बकरी, सभी का स्वागत है, क्योंकि प्रोडक्शन में उनकी सहायता है, काम में उनकी सहायता है। ये प्रेम नहीं है मित्रों। मैं जब अपने चाचा के पास पढ़ता था तो उन्होंने मुझे पहली बात यह सिखाई कि संसार में प्रेम है ही नहीं, आवश्यकता ही है। और मैं रिबेल हुआ था, मैं कहा कि क्या भयानक बात कह दी कि हमारी माँ का प्रेम नहीं, बाप का प्रेम नहीं। और वो एनालाइज करते चले गए कि यहाँ प्रेम है ही नहीं, सिर्फ गर्ज है, सिर्फ आवश्यकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अध्यात्म निरुपाधिक प्रेम है, मनुष्य और मनुष्य का निरुपाधिक संबंध, जिसमें मतलब नहीं है, किसी तरह का मतलब नहीं है। आप लोगों का धीरेन्दा का शब्द है, नाहक मीन है। रवि ठाकुर ने द डिवाइन आर्ट ऑफ मीटिंग फॉर द सेक ऑफ मीटिंग, क्यों जा रहे हो, मुझसे पूछा उदयपुर, मिलने जा रहा हूं और कोई काम नहीं, केवल मिलने जा रहा हूं। जिसे लोग फिजूल जाना समझेंगे कि फिजूल जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, तो ये दो बिजनेस वाले होते हैं, एक तो व्यापारी और दूसरा आध्यात्मिक मनुष्य। इनका प्रेम कभी निरुपाधिक नहीं रह सकता। इसलिए ये इनके जैसा निष्ठुर कोई होता भी नहीं दुनिया में। एक पारमार्थिक बिजनेस है, एक आर्थिक बिजनेस है, इतना ही अंतर है दोनों का। ये जिनको हम आध्यात्मिक कहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ लें कि अगर मनुष्य का स्वागत हो सकता है, और ये डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन एक मिथ है, तो मेरे लिए वो स्वागत की चीज है। अब तीसरा एक सवाल चुनी भाई ने उठाया था, इस विषय का मैं विवेचन पहले बहुत कर चुका हूँ, जब सर्वोदय मासिक पत्र निकलता था, सिलेक्टिव रीडिंग। एक दफा 1937 में विनोबा ने बापू से कहा कि प्रजनन रिप्रोडक्शन आध्यात्मिक वस्तु है, इसका विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, ये ईश्वर भजन के समान पवित्र एक्ट है, रिप्रोडक्शन का, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, ये एक पवित्र क्रिया है। और इसी के लिए स्त्री पुरुष का संग होना चाहिए। और दूसरे किसी प्रयोजन के लिए नहीं, क्योंकि इसका यही एकमात्र, इसी निसर्ग की, ईश्वर की यही एकमात्र योजना है। और इसीलिए कहा प्रजातंतु मा व्यवच्छेद सी, प्रजातंतु का व्यवच्छेद मत होने दो, वो पाप है। और राजा ही ने उसे भ्रूण हत्या कहा। तो बापू आए, वो तो मैरिज को फॉल कहते थे ना, कि पतन है विवाह, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। तो कहा आज विनोबा ने एक मुझे बहुत बुलंद बात सिखाई। तो कोई नई बात सीख लेते थे तो बच्चे की तरह उनको आनंद होता था, और ये बात विनोबा ने मुझे आज सिखाई। तो उस वक्त मैं इस परिवार नियोजन पर जो भाषण करता था उसमें अक्सर ये बात कहा करता था कि इसका संबंध आनंद से भी है, लेकिन मनुष्य का एक दोष भी है और एक गुण भी है, और वो यह है कि वो निसर्गाधीन नहीं है, इसीलिए वो सुसंस्कृत कहा जाता है। उसमें संस्कृति भी हो सकती है, विकृति भी हो सकती है। वो प्रकृति को बिगाड़ता भी है और सुधारता भी है। यह मनुष्य का गौरव है। दूसरे सारे प्राणियों में एक मेटिंग सीजन होता है। निसर्ग की जब प्रेरणा होती है तभी मेटिंग होता है, तभी स्त्री पुरुष संयोग होता है, नर मादा का। ये सारे पशुओं में है, इसलिए पशुओं के लिए संयम की आवश्यकता नहीं और विवाह की भी नहीं। ये दोनों है ही नहीं, उनके लिए कोई आपको सिखाना भी नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य में कामोपभोग है, काम से मतलब इच्छा, यहाँ काम शब्द का अर्थ इच्छा है, इच्छा के अनुसार उपभोग, खाना पीना सब में, नैसर्गिक प्रेरणा नहीं। इसलिए उसके पाक कला का भी इतना विकास हुआ और सब कुछ हुआ। तो ये जो मनुष्य की प्रेरणा है, इस प्रेरणा के कारण संतति अधिक हो सकती है। जितनी संतान को वो पोष सकता है या पाल सकता है उससे अधिक हो सकती है, या जितनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है माँ के। मैंने ऐसी कितनी माताएं देखी हैं अपने घर में और बाहर भी, जो तंग आ गई और भगवान से प्रार्थना करती रही कि अब ये बंद हो। तो मातृत्व की वासना तो समाप्त हो गई, लेकिन काम वासना समाप्त नहीं हुई। अब ये जो काम वासना समाप्त नहीं हुई, इसमें संयम का जरा सा भी एकाध दफा भंग हुआ तो संतान ही आती है, और फिर वो विश्वामित्र जैसी स्थिति होती है। शकुंतला पैदा हुई तो हाथ आंख पर रखकर इधर मुंह फेर लिया, अपनी जिम्मेवारी मानी नहीं। तो इस जिम्मेवारी को समझकर इस सीमा में मैं उस चीज को मानता कि इस प्रजनन की प्रक्रिया के साथ आनंद को क्यों मिलाया गया, कि मनुष्य उसमें प्रवृत्त हो। ये मनुष्य का कर्तव्य होता तो मनुष्य प्रवृत्त नहीं होता, उसको टालता। कर्तव्य उसे कहते हैं ना कि जिसमें नैसर्गिक प्रेरणा नहीं है, नहीं तो कर्तव्य शब्द की आवश्यकता ही नहीं। जिसमें मनुष्य राग प्रेरित नहीं है, यानी नैसर्गिक प्रेरणा जिस काम में नहीं है, उसे कर्तव्य कहते हैं। इसलिए उसका विधान करना पड़ता है, ये करो, जो नैसर्गिक है उसे करो नहीं कहना पड़ता। तो उसके साथ आनंद को जोड़ दिया, इस आनंद के अंश का लोप न हो, ये तो सही है। लेकिन अगर संतति संतान की संख्या इतनी हो गई कि माँ बाप भी तंग हैं और संतान भी तंग हैं और दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, तो मनुष्यता का ह्रास होगा। तब हमको चुनाव करना पड़ेगा कि इस आनंद को हम रखें या फिर मनुष्यता के ह्रास को होने दें। तो इसमें से मैंने ये कहा था कि अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं आनंद की बलि दूंगा, मनुष्यता के का ह्रास नहीं होने दूंगा, क्योंकि आखिर परिवार भी तो मनुष्यता के विकास के लिए है। मित्रों, या नर्सरी है जिसमें ह्यूमन वैल्यूज को हम डेवलप करते हैं। कुटुंब संस्था का और दूसरा मूल्य कोई नहीं है। ये पिंडोदक क्रिया और संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह ये सब गलत मूल्य हैं। उसका सही मूल्य यह है कि उसमें हम मानवीय मूल्यों का विकास करते हैं और अनजान में करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं। ये कुटुंब संस्था का मूल्य है, मुख्य मूल्य। लेकिन संतान अगर बहुत हो जाती है तो स्त्री की सारी स्त्री का स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है और पुरुष का मनस स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। और वो तो बच्चे होते ही रहते हैं अनवेलकम, उनका स्वागत नहीं होता। दूसरी बात, बहुत से माँ बाप तो इन्हें फिट ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड बन जाते हैं, यानी बगैर गफलत में ही माँ बाप बन जाते हैं। इसमें से किसी सांस्कृतिक मूल्य का विकास नहीं होता। तो जिस सांस्कृतिक मूल्य की बात चुन्नी भाई ने कही थी, उस सांस्कृतिक मूल्य को मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ दो ही विकल्प हों, एक तो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है और या फिर मेरा आनंद, तो मैं उस जगह अपने आनंद को सैक्रिफाइस करूँगा, उसका उत्सर्ग करूंगा। इस परिस्थिति में मैंने कहा था कि जो अपना तनय न हो, यानी औरस पुत्र न हो, वो भी सांस्कृतिक दृष्टि से अगला कदम है। जो अपना नहीं है उसको अपनाना संस्कृति है। आय एंड डाउ नाम की एक किताब मार्टिन बूबर ने लिखी है। तो दाऊ जितना आय के नजदीक आता है, तुम जितने मेरे नजदीक आते हो, उतना सांस्कृतिक विकास होता है। तो जो पराया है उसको हम अपनाते जाएं, ये सांस्कृतिक विकास का लक्षण है। तो मैंने दो में से जब दो ही विकल्प रह जाएं तो हमको इस विकल्प को अपनाना चाहिए। लेकिन ये बातें ही मूल में अगर गलत है, डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन ही नहीं है, लोकसंख्या का कोई स्फोट ही नहीं है, तो ये सारी बातें जो मैंने कही उनको भूल जाइए। लेकिन अगर वो है और गरीबी में, जैसे कहते हैं ना कि अकाल में 13वां महीना आ गया, एक महीना और ज़्यादा आ गया, तो जहाँ गरीबी में अगर लोक संख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। वो तो केवल एक संस्कार है कि लोग पुत्र हुआ तो बहुत आनंद। वो उसने लिखा है कवि ने कि एक मात्रा भी कम कर सकता हूँ मैं अपनी कविता में तो कितना आनंद होता है, पुत्र जन्म समक किल, इतना आनंद होता है जैसे पुत्र का जन्म हो गया। तो पुत्र के जन्म का आनंद जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ पर इसका विचार आवश्यक है। लोक संख्या का स्फोट हो रहा हो या ना हो रहा हो, दो पुरानी किताबें हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ी होंगी लेकिन उनके नाम आपको सुना देता हूँ। एक है जियोग्राफी ऑफ हंगर और दूसरी है आवर प्लंडर्ड प्लैनेट, बहुत पुरानी है। इन दोनों किताबों में हमारी प्राकृतिक संपत्ति और मनुष्य संख्या दोनों का विचार किया है और ये भी विचार किया है कि लोक संख्या के बढ़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये सारा विचार उसमें आया है। उन सबको मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। दूसरा जो सवाल कल आया था वो था हिंदुत्व के संबंध में, और उसके संबंध में मेन करंट की बात आई कि कुछ हर राष्ट्र में एक मुख्य प्रवाह होता है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि मुख्य प्रवाह की प्रगति इसमें है कि वो अपनी मुख्यता को भूले। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब संख्या, बहुसंख्या का गौरव यह है कि वो अल्पसंख्या का आदर करे। ये विकास की प्रक्रिया है। आज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में क्या है, विल यू अलाउ स्मॉल नेशंस टू बी बुलीड? जो छोटे राष्ट्र हैं वो क्या डरते रहे हमेशा, वो नहीं जिए? तो हमारे देश में जो छोटी जमातें हैं उनकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, ये जो मेन करंट वाली चीज है ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल से मेरा मतलब सत्तात्मक। अब ये सत्ता का एक आ ही गया है विषय तो थोड़े में कह दूं, बर्ट्रेंड रसेल की एक किताब है पावर ही उसका नाम है, तो मराठी में एक कहावत है, शायद गुजराती दूसरी भाषाओं में भी होगी, पैसे के पास पैसा जाता है। तो जिधर जहां शक्ति होती है वहां सत्ता जाती है। अब डेमोक्रेसी में हमने यह मान लिया है कि शक्ति संख्या में है, चीज गलत है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र बहुसंख्या का राज्य नहीं है, बहुमत का राज्य। मत का संबंध संख्या से नहीं होना चाहिए। बहुमत, बहुसंख्या वाले और अल्पसंख्या वाले दोनों का मिलकर बहुमत हो सकता है, मत संख्या से अलग होना चाहिए। लेकिन हमने मान ये लिया है कि संख्या ही डेमोक्रेसी है। इस सिद्धांत को मैं आसुरी सिद्धांत मानता हूं, इसमें मनुष्यता की हानि होगी। मनुष्यता की कदर, मनुष्यता का आदर किस चीज में है, अल्पसंख्या का आदर हो। अल्पसंख्या और बहुसंख्या में स्टेटस, रुतबा जिसे कहते हैं, प्रतिष्ठा, उसमें अंतर न हो, नहीं तो वो सेकेंडरी सिटीजन हो जाएगा। जिसकी संख्या कम है वो गौण नागरिक बन जाएगा। ये लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक भी है और अनैतिक भी है ये चीज। नीति की दृष्टि से भी। स्त्रियों की संख्या कम हो तो बच्चों की संख्या तो कम होती ही है, बीमारों की संख्या कम होती है। तो मुख्य प्रवाह और गौण प्रवाह की चीज हमको भूल जानी चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमारे देश में ये हुआ, संयोग से हुआ, योजना से नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान दो मुख्य जमातें इस देश में ऐसी आईं जो मिल नहीं सकी, पड़ोस में रहीं लेकिन साथ नहीं रह सकी। ईसाई, कल मैंने आपको बतलाया था कि ईसाई बहुत कुछ मिल गए, भाषा नहीं है उनके, पूर्वजों को हमारे मानते हैं, संस्कृति को भी मानते हैं। सिख तो इसी में से पैदा हुए, बौद्ध यहीं के थे, जैन यहीं के थे, लेकिन मुसलमान एक ऐसा आया जिसने अपनी भाषा, अपना इतिहास और अपनी संस्कृति को भिन्न बतलाया। इनमें से और किसी ने नहीं बतलाया, तो वो एसिमिलेट नहीं हो सका। ये एक दूसरे में एक जीव नहीं हो सके, समरस नहीं हो सके। इसलिए ये सवाल आया। शुरू शुरू में जब मैं छोटा था तो अमेरिका में हर भारतीय को हिंदू ही कहते थे, यहाँ का मुसलमान भी अपने को हिंदू ही कहलाता था, यहाँ का क्रिश्चियन भी ही इज ए हिंदू क्रिश्चियन, ही इज ए हिंदू मुस्लिम, इस तरह से हर एक ही इज ए हिंदू पारसी, इंडियन की जगह हिंदू शब्द चलता था। अगर वो चलता रहता तो कोई हर्ज नहीं था, कोई झगड़ा ही नहीं था, चलता एक शब्द हिंदू, वो सबके लिए होता। लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, तब हिंदुओं में ये नई आइडेंटिटी की कॉन्शियसनेस आई, इमर्जेंट आइडेंटिटी, कि हमारी भी कोई अस्मिता है। नई अस्मिता उस वक्त हिंदुओं में जागृत हुई। तब हिंदुओं की व्याख्या की जाए, सवाल आया, कल मैंने सब कहा था। इसमें सबसे आखिरी व्याख्या हुई सावरकर की, जिसको मैं कम से कम सदोष मानता हूं, बाकी तो व्याख्याएं ही नहीं है, लेकिन सावरकर की कम से कम सदोष है। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिनकी पितृभू है और पुण्यभू है वो हिंदू, ये तो यहाँ के हिंदुओं के लिए सही है, यहाँ के हिंदुओं की ये पितृभू भी है पुण्यभू भी है, लेकिन नेपाल के हिंदुओं की सिर्फ पुण्यभू है पितृभू नहीं। और बौद्धों की, चीन के बौद्धों की, अगर उनको हिंदुओं कहना है तो पुण्यभू है पितृभू नहीं। तो कुछ हिंदू ऐसे हैं जिनकी ये पुण्यभू है पितृभू नहीं है, और कुछ हिंदू, कुछ इस देश के हिंदुस्तान भारतीय ऐसे हैं जिनकी ये पितृभू है लेकिन पुण्यभू नहीं है। मुसलमानों की पितृभू है, ईसाइयों की पितृभू है, लेकिन पुण्यभू नहीं है। इसलिए कल मैंने एक ही वाक्य में कह दिया था, उसको ज्यादा विशद नहीं किया था, कि भारतीयत्व और हिंदुत्व एक नहीं हो सकते। तो मैंने इतना ही कहा था कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इतनी बात छोड़ दीजिए। इस्लामियत ही कौमियत है, इतनी बात मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए। एक ही वाक्य में मैंने कहा था कि इतना ही करना है। तो ये मेन स्ट्रीम और सेकेंडरी स्ट्रीम की बात नहीं रह जाती है, ये बात हमको कहीं नहीं पहुंचाएगी मित्रों, असद्भाव पैदा करेगी, कटुता पैदा करेगी आज की परिस्थिति में। पुरानी परिस्थिति में हिंदू शब्द चल जाता राष्ट्रीयता के लिए तो कोई हर्ज नहीं, कोई किसी तरह की हानि उसमें नहीं होती। लेकिन आज हम इस मेन करंट की बात करेंगे संख्या के बल पर, तो डेमोक्रेसी में तो संख्या का ही महत्व है। सबके मन में आप संदेह पैदा करेंगे और भय पैदा करेंगे, आतंक पैदा करेंगे, उसमें से राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। एक बात मैं बार बार कहता रहा हूँ, उसकी याद दिला दूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, देश प्रेम पेट्रियटिज्म है। देश में रहने वाले मनुष्यों से प्रेम नेशनलिटी है। जमीन पर, जमीन को प्यार करना पेट्रियटिज्म, देश प्रेम। जमीन पर रहने वाले मनुष्यों को प्यार करना राष्ट्रीयता। तो हमारे देश में देश प्रेम है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं है, उसका विकास करना है। इसलिए इस हिंदुत्व शब्द का आग्रह छोड़ देना चाहिए। धार्मिक आग्रह रखें, हमारा धर्म हिंदू धर्म है कहते रहिए, हमारा इस्लाम धर्म है कहते रहिए, उसके साथ इस संदर्भ में झगड़ा नहीं है। जिस संदर्भ में झगड़ा है वो मैं कह चुका हूँ, इस संदर्भ में मेरी कोई उसके साथ शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। फिर एक सवाल कांति भाई ने उठाया था कि जो गरीब हैं उनके उपभोग पर हम मर्यादा न लगाएं,